चलिए, अब आप चाहते हैं तो नोट कीजिए, तीन सवाल हैं आपके सामने गौर करने के लिए। क्या, हु एम आई, वट कैन आई डू वेल, एंड वट एम आई पैशनेट अबाउट। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं क्यों हूँ, और मैंने किधर जाना है, क्या करके जाना है। ये वो सवाल है जो हर इल्हामी किताब की बुनियाद है। और सूरह बकरा में जब तीसरा रुकू शुरू होता है ना, या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुम से आखिर तक का, उसमें मैं ये सवाल अक्सर बोलती हूँ तफसीर की क्लासों में, कि ये एक रुकू इन तीन बड़े बड़े सवालों का जवाब देता है। मैं कौन हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्यों आई। और आपको अपनी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ चाहिए होती है जिसके लिए आप मेहनत करें, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि आप किसी चीज़ के लिए तड़प रखते हैं ना, तो वो आप उसी के लिए काम करते हैं। तो ज़िंदगी में वो चीज़ जो इंसान को काम करने पे माइल करती है ना, वो उसका पैशन है। पहली चीज़ लिखिए, फाइंड योर पैशन। पैशन क्या है, ज़रा सा मैं इसको खोल दूँ तो आप भी खुश हो जाएंगे। देखिए, आप बचपन में, मैं भी जब अपने थोड़ा सा पीछे झांक के देखते हैं ना, तो हमें उसमें एक जुमला मिलता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। पैशन जो है ना, हॉबी की आखिरी स्टेज है। शौक, कहते हैं ना, शौक दा कोई मुल नहीं। आप किसी भी चीज़ को अपना पैशन बना लें, बस ये हैं आप। आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का गोल बड़ा बनाएंगी, उतना बड़ा आपका रोल होगा। सवाल कीजिए खुद से कि अगर मेरे पास दुनिया की तमाम दौलत आ जाए, सोच लिया, पूरी दुनिया के बिल गेट की दौलत भी आपके नाम पे होगी, तसव्वुर में अपने नाम पे स्टेटमेंट्स में करोड़पति और अरबपति खुद को देखिए। और एक और भी लिखिए कि अगर आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाए, यानी आपकी उम्र 60-70 नहीं है, जियो जितना जीना है, अल्लाह कहते जा बंदे, तू चूज़ कर ले तूने कब जाना है। एक दिन तो ले जाऊंगा, लेकिन तू 100 साल जीना चाहता है, 200 साल जीना चाहता है, लिखें। दो चीज़ें हैं, जो माल चाहिए वो ले ले, रिसोर्सेज, माल, स्किल, जो भी, और जितना वक्त लेना ले ले। आप किसी टीचर को जेन में लाएं, 3 घंटे का पेपर सबके लिए है, 5 सवाल लाजमी है। ये लिमिटेशंस होती हैं कमरा इम्तिहान की अमूमन, लेकिन किसी एक स्पेशल स्टूडेंट को टीचर कहता है, जाओ जितनी देर लेनी है ले लो, मैं तुम्हारे साथ शाम तक किधर बैठी हूँ। ये सारे कलम भी हैं, कागज़ भी ले लो, ताकि पता चले तुम लिखना चाह रहे थे और कागज़ ख़त्म हो गया और कलम ख़त्म हुआ। आप इमेजिनेशन में लाइए ज़रा अपने आप को ऐसे स्टूडेंट के, क्या आप अगर वाकई ऐसी हैं और आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगी। बात समझ आ गई है। बंदे को जो मिला है ना, उससे अनलिमिटेड टाइम और भी मिल जाए, और जितनी को ज़िंदगी है ना मेरी आपकी, इससे कई गुना ज़्यादा मिल जाए, कुछ लोग फिर भी कुछ नहीं करेंगे। बिलीव मी, कुरान की कई आयतें मेरे दिमाग में इस वक्त, सिर्फ ले लीजिए सूरह मोमिनून का आखिरी रुकू है। उस वक्त बंदा क्या कहता है कि अगर एक दफ़ा मौका मिल जाए ना वापस आने का, तो मैं बड़ा कुछ करूँ। सूरह अल अनाम ले लीजिए, सूरह नहल में है, अल्लाह कहते हैं कि वलौ रुद्दू लादू, अगर इनको पलटा भी दिया जाए ना, ये फिर वही कुछ करेंगे जो पहले करते थे। मुराद ये है कि जो नहीं कुछ कर रहे वो नहीं करेंगे। आप देखते हैं, कहते हैं जितना टाइम लंबा हो जाता है उतने ठंडे हो जाते हैं। टाइम को जितना लंबा करें च्युइंगम की तरह, उतना ही वो हमारा ज़्यादा ज़ाया होता है। आपके पास गोल है कि आपने 4 बच्चे और शौहर भी, 6 लोगों का खाना बनाना है, तो शाम तक मुश्किल से वही बनता है, और आप हाय हाय भी कर रहे होते हैं। और जैसे ही माशाल्लाह मैके से 20 लोग दावत पे आए डिनर पे, तो आप 20 लोगों का खाना भी पकाते हैं और मेकअप करके तैयार होके भी बैठे होते हैं उनके आने तक। क्यों, फ़र्क क्या है, कि वहाँ गोल छोटा था, कोई इतना शौक नहीं था, रोज़ यही तो खाते हैं, इन्होंने तो कभी अप्रिशिएट नहीं करना, आज तक इनसे मिला ही क्या जो और मिलेगा। लेकिन जिस दिन मन पसंद मेहमान आने थे, तो गोल भी 5 गुना बड़ा था और आप खुश भी ज़्यादा थे। तो क्या पता चला कि जिस काम में आपको मज़ा आता है ना, वो है असल में आपकी असल शख्सियत। एक किसी का कॉल है कि दुनिया का कामयाब तरीन इंसान वो है कि जिसका पैशन और प्रोफेशन एक ही हो। समझिएगा, प्रोफेशन क्या है, जॉब, काम, जो भी आपको जिम्मेदारी मिली, और पैशन क्या है, शौक। मसलन दुनिया में इंसान हर काम करते थकता है, मोहब्बत करने से कोई नहीं थकता, और अगर काम से मोहब्बत हो जाए तो थकन ही नहीं होती। तो लव योर जॉब। ग्रेड 14 का अफसर है, अंदर से मुतमईन है कि शुक्र है जो मेरा काम है, मैं रात को बिल्कुल पूरा करके आता हूँ, और मुतमईन हो कि जो रोटी लेके आ रहा हूँ घर से ये हलाल की है। और इसके बरक्स आप 20 ग्रेड के ऑफिसर बन जाएं और आप सियासत में चले जाएं और आप शो बिजनेस में चले जाएं, 420ियाँ कर करा कर आएंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो ज़िंदगी में एक असूल बनाइए कि अपना पैशन उन चीज़ों को बनाइए जो बाकी रहने वाली हैं। कुरान पढ़ने के बाद और इससे ताल्लुक़ के बाद वाकई ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि दूसरों की हिदायत का ज़रिया बने। और याद रखिए कि ये भी एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम होता है, दिल में हिदायत का आ जाना ये अल्लाह की रहमत है। आप चाहते हैं कि मैं खुदा तो मुख्तदीन बन जाऊँ तो ये अल्लाह की रहमत है आप पे, और आप उसके लिए तड़पना शुरू कर दें। ये जो पैशन है ना, ये तड़प भी है, और आप जिस चीज़ के लिए तड़पना शुरू करते हैं ना, चंद साल तो बहुत बड़ी बात है, महीनों बाद भी आती है, लेकिन चंद साल बाद तो वो चीज़ आपके पाँव में आ जाती है, क्योंकि आपका मेरा पैशन बन गया कि मुझे ये काम करना है। लोग थके हुए आते हैं 5 घंटे काम करके, और आप ऐसे फ्रेश आते हैं कि गए थे सुबह तो खुशी नहीं थे, वजह क्या है कि आपका जो काम है ना वो आपका पैशन है। दीन वाला दीन को प्रोफेशन नहीं बना सकता, हाँ परफेक्टली कर सकता है। तो आप जो भी काम करें जिसमें आपको मज़ा आए, समझ लीजिए कि आप वो हैं। और फिर याद रखिएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत बड़े काम को अपना पैशन बनाऊंगी ना, तो वम ममा यन फो नासु फ यम कुस होगी। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट थिंग, डिफाइन सक्सेस। आपकी नज़र में कामयाबी है क्या? व्हाट इज सक्सेस? वही बात है, किसी का अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा सा तैयार होके, चंद दोस्तों से जुमले अच्छे सुन लेना, यही कामयाबी है, इतना ही बहुत है, और क्या करना है, इससे बड़ी क्या करेंगे? और कुछ कहते हैं नहीं, वक्त फुर्सत कहाँ काम अभी बाकी है, दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। तो अपने आप से सवाल कीजिए, मेरी ज़िंदगी का हदफ क्या है, और हदफ को इंग्लिश में गोल कहते हैं, व्हाट इज़ माई गोल इन लाइफ। चलिए सूरत मुनाफिकून की आखिरी आयत को सामने ले लीजिए, लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया से जाते वक्त जब फरिश्ता आता है जान लेने, तो वो कहते हैं कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, अभी नहीं मरना। क्यों? फसद्दक वकुम मिन सालिहीन। दो ख्वाहिशें करता है बंदा उस वक्त इस आयत की रोशनी में, एक तो ये कि माल बहुत रखा हुआ है, तिजोरियाँ भी भरी हैं, और मेरे नाम पे कितने प्लॉट हैं, कितनी ज़मीनें हैं, ज़रा सा वक्त दो, मैं चंद पेपरों पे साइन कर रहा हूँ कि मेरे बाद ये अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी लंबी लंबी लिस्टें थी नेकियों की, कर नहीं सका, अब मौका दे दो तो मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ ज़रा सा सोचिए कि जब एक बंदा दुनिया से जाते वक्त ये ख्वाहिश करे कि जिस वक्त अब ख्वाहिशों के पूरे होने का वक्त नहीं है, रिजल्ट्स मिलने का वक्त है, जैसे तालिबे इल्म कमरे इम्तिहान में तो ताका झांकी करता रहे, सोता रहे, और चलो मैं व्हाट्सएप चेक कर लूँ और मैं फेसबुक पे अपने मैसेजेस देख लूँ, पोस्ट करूँ, और जब आखिरी वक्त आए और एग्जामिनर उससे पर्चा छीनने लगे तो उस वक्त चीखने लग जाए कि ज़रा सा मुझे वक्त दे दीजिए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो ना समझी की बात है। बिल्कुल इसी तरह से जितना आप अपनी ज़िंदगी का गोल अचीवेबल और बड़ा बनाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल सेटिंग पे बहुत बड़ी बात की कि जब तक हमारा कोई गोल नहीं है जीने का, हम काम नहीं करेंगे। तो आपने मैंने अगर ख़ुद को पहचानना है तो हमें अपने गोल पहचानने पड़ेंगे, और हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका खुद देखना पड़ेगा। फुटबॉल के प्लेयर्स एक ही बॉल के पीछे घूम रहे होते हैं, कई दफ़ा एक दूसरे को पाँव लगता है, चोट भी लग सकती है, लेकिन दो बॉल कोई नहीं डालता। जिस दिन दो बॉल डालेंगे उस दिन टीम दो हिस्सों में बटेगी। देखिए दीन का काम चाहे 10 लोग मिलकर करें या 2 लोग मिलकर करें, आखिर तक साथ रहेंगे, शर्त एक एक के गोल एक हो। और इसके ऑपोजिट सगे भाई ही मिलकर या दो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स मिलकर ये काम क्यों ना करें, साल ही में पता चलेगा वो दो ग्रुप बन गए हैं, अब दो जमातें बन गई हैं। वो 4 लोगों ने मिलके क्लास शुरू की थी, अच्छा कैसी जा रही, कहते नहीं वो 3 लोग तो पहले ही छट गए थे, अच्छा क्यों, वो कोई ये कह रहा था कोई क्या, और असल में ना सबको टीचर बनना था। अरे कहती थी मुझे माइक दे दे, मैं क्यों बैठूं रिसेप्शन पे और बैठ के आने जाने वालों के नंबर लिखूं। और फुलां कहती थी लो अब मैं बच्चे संभालूं, मैं इतनी दूर घर से पहले ही डांट खा खू के आती हूँ, तो अब आप मुझे बेबी सिटिंग में बिठाते हैं कि बच्चे दूसरों के और पालूं, मैं नहीं करती। अच्छा फिर क्या हुआ सिस्टर, ये यकीन करें दिन रात की कानों सुनी बातें हैं इधर उधर से, अब आप सुनते हैं देख एंड पे वो कान में कहती हैं, इसमें सब कहते हैं हमें कुर्सी मेज दे दीजिए जहाँ बैठ कर पढ़ाते हैं, स्वाब तो इसका अब बैठ कर बच्चे पालने का स्वाब थोड़ी है। तो बात समझ गए, एक गोल एक गाड़ी बनना है। फाइंड योर द बेस्ट स्किल्स, आपको अपनी स्किल्स का पता होना चाहिए, अंदर है क्या खूबी, तो अगली चीज़ पे चलिए। और वो क्या है कि फिर आप चाहती हैं कि मुझे तो फ़ायदा देना है और इंसानियत को फ़ायदा देना है, तो फिर यू शुड नो योर सेल्फ। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी शख्सियत क्या है, आपको किस चीज़ के लिए पैदा किया गया। मसलन एक मिसाल मैंने पहले भी कोट की हुई है कुछ जगहों पे, कि एक शख्स गाय पे बैठ गया और उसको हांकने लगा, चलो चलो। अब गाय बेचारी थोड़ी सी अपनी हिम्मत से ज़्यादा भागी, हांकने लग गई। हाँ, अब क्या हुआ, उसने और चाबुक मारा। जब वो दो तीन चाबुक मार चुका और गाय अपनी पूरी एनर्जी लगा चुकी, तो अगले चाबुक पे गाय ने पीछे मुंह मोड़कर कहा कि बात सुनो, अल्लाह ने हमें इतना बोझ उठा के चलने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तो हमें दूध देने के लिए पैदा किया। तो लिखिएगा, बहुत सारे लोग जिंदगी में एक गलती करते हैं, दूध देने वाली गाय को बारबर्दारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह दीन के इस काम में जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं, कुछ लोग गलत जगह चूज करते हैं अपने लिए, या दूसरे उनको गलत मशवरे देते हैं। सीरत पढ़ने और पढ़ाने के बाद मैंने जिस चीज़ को अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी कामयाबी समझा है, आपने लोगों को उनके टैलेंट के मुताबिक, उनकी शाकिला के मुताबिक और उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक काम दिए। अबू बकर, उमर, अली और फुला फुला, हर एक की एक अलग खूबी थी। अल्लाह के नबी ने जो काम अबू बकर सिद्दीक कर सकते थे ना, वो उमर फारूक को नहीं दिए। और इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का अपना मुकाम है, इब्ने अब्बास का अपना मुकाम है, खालिद बिन वलीद का अपना मुकाम है। लोगों को वो काम देना, वो काम लेना, आपके वक्त तो आज के टॉपिक में लेना है, कल देने पे बातें होंगी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत। आप जब भी कोई काम लें अपने लिए, पहले चेक कीजिए मेरे में इसको ये हॉबी है भी कि नहीं। देखिए, एक तो गाड़ी की मिसाल है ना, पुर्जे हैं जो शुरू से चल रही है हमारे साथ साथ, आप हैं ही नहीं स्टेयरिंग तो आपको क्यों आगे सामने बिठाया जाए। आप ब्रेक हैं तो फिर पाँव के नीचे ही होंगी ना, ब्रेक आप ऊपर से जा दें, नहीं। बस अब हमारे अंदर वो खूबी होती कोई नहीं जो हम दूसरों को देख रहे होते हैं जो बड़ा खूबी का काम है, तो हम कहते हैं मैंने यही करना है। तो ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो वो काम करते हैं जो वो कर सकते हैं। वो काम नहीं करते जो देखने में दूसरों की नज़र से बड़ा अच्छा लग रहा होता है, ज़ाया कर देते हैं सारी ज़िंदगी लोग किसी ऐसी कोशिश में जो होनी कोई नहीं। और वन मैन शो होता है ना, जहाँ मैं कर सकती हूँ सब कुछ, मेरा आई विल डू इट। मुझे किसी ने एक मशवरा भी दिया, टेक्निकली बता रही हूँ मैं आपको, आपको पता है कि एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड होता है और अब तो तकरीबन हर चीज़ डिस्प्ले पे भी आती है, तो बहुत बड़ा काम है। मैं तो कह लीजिए कि ओफ करती हूँ उन साथियों को जो एक एक बोले और कहे और रीडिंग मटेरियल को आप तक शेयर करते हैं। आसान काम नहीं है ये, एक दो दफ़ा हफ्ते महीने में करना इज़ वेरी इजी, बल्कि बड़ा अच्छा है, लेकिन जहाँ दिन में 5-5, 6-6 घंटे कई दफ़ा जाता है तो मुश्किल होता है। तो मुझे किसी ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है, आप खुद कर लें, ये ऑप्शन है, दिस दिस ए टिक टिक टिक। मैंने उनकी बात सुनकर एक कान से पूरी सुनी भी नहीं, दूसरे से निकाल दी। मैं क्यों करूँ ये काम? आप चाहते हैं कि ये काम मैं करके इतने लोगों को ले ऑफ कर दूँ, और जो वो क्वालिटी दे सकते हैं वो मैं दूंगी, फिर मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बैठकर वही देख रही होंगी कि आवाज़ जा रही है कि नहीं और स्लाइड जा रही है कि नहीं, मैं वो क्यों करूं? तो लिखिए कसूल, आप वो काम करें नंबर एक जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी कॉपी में स्लोगन बना के लिखा हुआ है, मैंने वो काम करना है जो कोई नहीं कर पाएगा। देखिए ना, जो काम दूसरा कर पा रहा है बल्कि मेरे से भी अच्छा कर रहा है और कर चुका है, मैं उसको क्यों दोहराऊं? हर सीरीज खोल लीजिए, हजारों सीरीज मुझे लगता है कि अगर शुरू से आखिर तक जमा करें ना, तो डिफरेंट छोटी बड़ी जमा करें तो हंड्रेड्स में तो हैं, ये तो मुझे पहले ही पता है। कोई चीज़ रिपीट नहीं है किसी से। मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ ना, किसी ने ये कर ली है तो मैं कहती हूँ अब मैं इसी को दोबारा जो करने लगी तो ये क्या मैंने खूबी की? मैं वही क्यों ना रिकमेंड कर दूँ कि देखिए ये बड़ी अच्छी सीरीज़ है, ये फलाने की है, आप सुन लें, ये इंग्लिश में चले आप उर्दू में कर दें, कोई बुरी बात नहीं। ये किसी ने बहुत 6-7-8 घंटे में की, आप उसका खुलासा 1-1.5 घंटे में कर दें, वेरी गुड। या किसी ने बहुत छोटी की है तो आप उसको एलेबोरेट कीजिए। वरना देखिए, इधर से उधर से बातें लेकर आप हदीसें आयतें जमा करके घंटों पढ़ें, उसे क्या मुश्किल लगेगा और फ़ायदा क्या होगा? एक काम हुआ आप दूसरा कीजिए, एक स्टाइल पूरा हुआ आप दूसरा स्टाइल लीजिए, क्योंकि दुनिया में भी बहुत सारे करने के काम हैं। तो अब आपको अपने आप से कुछ काम लेना है, तभी तो आप काम दूसरों से मांगते हैं ना। देखिए वॉलंटियर फॉर्म दिन रात आते हैं माशाल्लाह, इस वक्त वॉलंटियर फॉर्म्स की तादाद उससे कई गुना ज़्यादा है जो शुरू में सिर्फ क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स की थी। जो साथी जानते हैं उनको पता है। अब जो लोग वॉलंटियर फॉर्म फिल करते हैं, आप हैं, मैं हूँ, मैं किसी जगह फॉर्म फिल करूँ तो मुझे क्लिक करते करते पहले सोचना चाहिए कि मैं बनी किस चीज़ के लिए हूँ और मैं कर क्या बेहतर सकती हूँ। देखिए एक बात याद रखिए, जहाँ भी कोई काम शुरू होता है ना, नया काम, फिर तो सब कुछ करना पड़ता है। यकीन करें, आज भी कुछ साथी कहते हैं ना कि हमने पावर पॉइंट आपसे बनाना सीखा और शीट आपसे बनानी सीखी। मैं खुद मानती हूँ मैंने हर काम खुद किया, शुरू में कच्चा पक्का किया, जैसा किया वो वक्त था गुजर गया, लेकिन उसके बाद ये समझ आ गई कि हर काम मैं कर नहीं सकती खुद, और सारी करूँगी ना चीज़ें खुद तो एक का भी हक नहीं दूंगी। जिससे ये बात समझ आ गई, उसके बाद देखा हर चीज़ को है, किया नहीं हाथ से। पास पड़ी चीज़ कभी नहीं उठाती कि मैं उठाऊंगी तो रोज़ मैं ही उठाऊंगी, ये उनको उठानी चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है। तो आप अपने आप से भी काम लें और दूसरों से भी काम लें, वरना होता पता क्या है। एक बड़ी दिलचस्प सी बात शेयर करती हूँ आपसे। आप कोई ऐसा काम अपने ऊपर ले लेते हैं जो आपको करना नहीं आता, एक सिचुएशन वर्स्ट सिनेरियो ये है, दूसरी तरफ लीजिए कोई आपको ज़बरदस्ती ऐसी जगह पे बिठाता है, नहीं 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 आप कर लेंगे कर लेंगे, ये दोनों सूरतें वर्स्ट सिनेरियो है। जब वो काम आप खुद पे ले लें जो आपको आता नहीं है, या आप पे डाल दिया जाए, तो तीन लोगों पे जुल्म होगा। नंबर एक, खुद आपके ऊपर। जिन लोगों को काम करना नहीं आता ना, वो चिड़चिड़े होते हैं अक्सर। बड़ी मशहूर मिथ है, हम भी अपने कॉलेज स्कूलों में सुनते थे कि जिस टीचर को पढ़ाना नहीं आता ना, वो गुस्सा बड़ा करता है। ज़रा सी कोई सवाल पूछ ले, बात पूछ ले तो चिड़चिड़ा, इसके अंदर उसको जवाब नहीं आता तो चुप कर तुम मेरी बेलमी क्यों खोल रहे हो। और जो मौलवी साहब अच्छी तरह पढ़ा नहीं सकते, वो कहते हैं डंडे के बगैर हिफ्ज ही नहीं होता। तो आपके अपने ऊपर जुल्म होगा। ये वही बात जो भी मिसाल दी ना कि गाय के ऊपर अगर आप 2 मन का वजन डाल दें तो ये गाय पे जुल्म है। वो बेचारी ने जो दूध भी देना था शाम को, हो सकता है वो भी 2 लीटर की बजाय वो आज 1.5 लीटर ही दे पाए। तो आप जब कोई ऐसा काम ले लेते हैं ना जो आपको आता नहीं है, जिसमें शौक नहीं है या मज़ा नहीं आता, आपकी तबीयत नहीं, तो आप खुद चिड़चिड़े रहेंगे, दुखी होंगे। आप देखिए वो मर्द जो बिजनेस में जाते हैं या जॉब पे जाते हैं और उनको वो काम वहाँ करने पड़ते हैं जो पसंद नहीं, चिड़चिड़े आते हैं, कहते हैं बेगम मुझे नहीं करना ये काम, ये बस मजबूरी में, अब जॉब और कोई मिल नहीं रही थी वरना मुझे मज़ा तो नहीं आ रहा। दूसरा जुल्म होता है उन लोगों पे जिनको आप सर्विस दे रहे होते हैं, वो तो उन पे ज्यादती है। आप सर्विस दे रहे हैं ना, वो सर्विस ही नहीं, मतलब मुझे पढ़ाना ही नहीं आता, तो मैं कहती हूँ कि मेरे सिवा आप कोई है कौन जो मेरी जगह पढ़ाए, मैं बैठ गई। अब देखिए ज़िंदगी का एक गोल होता है, एक वक्त होता है, आप कर सकते हैं, आप करते 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 हो सकता है आपकी आवाज़ ही बदल जाए, हो सकता है आपकी मेमोरी लॉस हो जाए, हो सकता है कि अब आपकी बात में वो फ्लो ना रहे। तो बड़े अच्छे तरीके से अपने उरूज के वक्त पर ही साइड पे होके किसी और को आगे लाना चाहिए कि हम कहाँ तक पढ़ाएंगे। और इससे भी आसान मिसाल लीजिए, सास सारी ज़िंदगी उस औरत ने घर बनाया फिर चलाया, अब घर में बहू आ चुकी है, बेटियाँ बड़ी हो चुकी हैं, वो कहती है नहीं खबरदार, मैं मेरी ज़िंदगी में इस चूल्हे पे कोई और हाथ रखे, मेरी ज़िंदगी में ये घर का महीने का खर्चा किसी और को मिले मैं नहीं करूँगी। पहली बात है वो खुद पे जुल्म करेंगी, फिर सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ी रहती हूँ, घुटने सूज गए, और दूसरी तरफ वो कह रही होंगी कि बहू नहीं काम करनी, मिली नहीं, हाँ है तो डॉक्टर पर अब घर तो चलाना था। पहले रिश्ते ढूंढते वक्त हम कहते हैं कि कमाती कितना है, और 2-4 महीने के बाद कहते हैं रोटी नहीं अच्छी पकाती। तो बहरहाल फिर इसके बाद आप देखिए कि जिनको सर्विस मिलती है उन पे नुकसान है, वो बच्चे कहेंगे अम्मी आप पहले की तरह का खाना नहीं बनाती, अब ये अब चावल ढीले हो जाते हैं, तो आप उस पर जुल्म करते हैं। इसी तरह याद कि तीसरा जुल्म हम करते हैं उस नाम के ऊपर, वो नाम ख़राब हो जाता है, क्रेडिबिलिटी जो होती है ना वो उस नाम की, उस प्रोफेशन की ख़राब होती है। वैसे चले हम नूर कुरान का नाम ले लेते हैं, अपना नाम है कुबरी बात तो नहीं है ना, अल्लाह ना करे कि मेरी वजह से आपके स्कूल का नाम बदनाम हो, वो कहेंगे कौन है आपकी टीचर, वो रहने रहे बंद करें हम नहीं सुनते आपकी बातें, उनको क्यों पढ़ाना आता है, पता नहीं क्या बोलती रहती हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती उनकी बात। अब मेरे पे भी जुल्म है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पढ़ाऊँ पढ़ाऊँ क्योंकि आपने मुझे कह दिया पढ़ाऊँ, तो मुझ पर जुल्म, बीच में मुझे गुस्सा भी आएगा बहुत दफ़ा क्योंकि मुझसे वो काम ले रहे हैं जो मुझे आता नहीं, और सबसे बड़ी बात आपके नूर-ए-खुरां का नाम बदनाम होगा। जिन लोगों को ड्यूटीज असाइन की जाए, और मैं इनको अक्सर कहती हूँ साथियों को कि सबको आप ट्रेन कर लीजिएगा, जिन्होंने माइक पे आके बोलना है ना, मुझे मौका दीजिएगा थोड़ी सी मैं भी उनकी खिदमत कर दूँ। क्यों, आपके अंदर इल्म का खजाना है या आप कितने मुत्तकी परहेजगार हैं, आपकी टोन ही नहीं अच्छी, आपका अंदाज ही ऐसे जैसे वो पंजाबी में कहते हैं छिबियां देने वाला, और आप इतना तेज 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 बोल रहे हैं कि ट्रेन चल पड़ी, या आप इतना आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं कि लोग सो गए हैं। तो आपने किसी को क्या असिस्ट करना है कि माइक आडमिन है आप और आप रिकैप्स करा रहे हैं, जिनको रिकैप कराने ही नहीं आते वो तो दोबारा तफसीरें कर रहे होते हैं, आप इनको रिकैप की कैसे जॉब दे सकते हैं? ये तो स्टूडेंट को अपने पास से नई नई बातें इतनी सुनाएंगे कि रोब डले के वाह, उस्ताद ने जो पढ़ाया उससे तो एक्स्ट्रा बाजी ने हमें बता दिया, फुलां बाजी जरा ठहरे हम आपसे ले लें। बाज लोग रिकैप को दोबारा तफसीर कराना कहते हैं, वो तो अपने जोम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरों को मसला, ग्रुप ले लीजिए। देखिए एक एक कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह अगर 8-10 लोगों पे भी एक ग्रुप रखें, ग्रुप लीडर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग आते हैं तो आपको 50-60 ग्रुप लीडर भी बनाने पड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक ग्रुप लीडर ऐसा है वो कहता है ठहरो मैं तुम्हें रूटवर्ड लिख के देती हूँ, अच्छा सुने मैं आपको ना वो एक्स्ट्रा पेपर्स भी प्रिंट आउट करा देती हूँ, और आप देखिए ये वो। आप मुझे बताएं कोई नया स्टूडेंट ऐसा होगा जो उसको छोड़कर किसी और के पास जाना चाहे? आप दोस्त दोस्तों में बातें करते हैं, वो कहते हैं हमें क्या ये किया, 50 ग्रुप्स में से 48 ग्रुप्स में वही होता है जो उनको पीछे से कहा और बताया जाता है। दो ग्रुप लीडर्स हैं वो माशाल्लाह अपना खूब स्किल्स खोलती हैं और वो दोस्त आपस में बातें कर, अब फौरन कंप्लेन आ जाएगी स्कूल के पास, हमारी ग्रुप लीडर तो अच्छी नहीं है, वो तो हमें बस एक्स्ट्रा चीज़ें तो देती नहीं है। तो ये वो चीज़ें जो मैं आपको इसलिए मिसाल देती हूँ कि आप साथी हैं, ये बातें पब्लिकली तो समझ भी नहीं आएंगी लोगों को, अगर कोई सुनेगा भी तो माजरत है उससे। तो जब आपको वो काम मिले जो आपको करना नहीं आता, या तो सीखिए अगर सीख सकते हैं, अपने आप को ऐसे पेश कर दें जैसे बोनलेस मीट नहीं है कि सिरका डालो, नमक डालो, मिर्च डालो, कचोके लगाओ चाकू से, छुरी से, फोक से, लेकिन मुझे मैरिनेट करके बाहर निकालना, फिर टेस्ट दूंगी। बस दफा हम ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीज़ें कोट कर लेते हैं लेकिन वो हमारा असल नहीं होता। और याद रखिए एक ट्रेंड होता है ना क्या बनना है, हर एक को वो अच्छा लगता है। हम छोटे थे लोग कहते थे क्या बनना है, हम कहते थे डॉक्टर बनना, और स्कोप बड़ा है जी, डॉक्टरी का बड़ा स्कोप है। आजकल की सारी तालीम जो है ये प्रोफेशन बन गई है ना, कमाना किधर से है, जॉब्स किसको बाद में मिल जाती हैं, ये है वो। हालांकि एक जुमला लिख लीजिए, स्कोप फील्ड का नहीं है, पर्सनैलिटी का है। अच्छा बंदा किसी भी फील्ड में चला जाएगा वो कामयाब होगा, और सुस्त ढीला डिसऑर्गेनाइज बंदा, उसको आप मुल्क का मिनिस्टर क्यों ना बना दें, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बना दें, वो बातें ही सुन के आएगा लोगों से। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने ऊपर सोचें कि हम हैं क्या, हम पर्सनल ग्रूमिंग करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा काम आपकी कि अपनी पर्सनैलिटी को ढूंढिए। कल के सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको एक तो मल्टी इंटेलिजेंस ज़हानत की मुख्तलिफ किस्में बताऊंगी और आप नोट करेंगे कि आप किस किस्म की ज़हीन है, और इसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी की डिफरेंट टाइप्स कौन सी है, कल इस पे बात करनी है, और इसी तरह मल्टीटास्किंग कल के हमारे एजेंडे में है इंशाल्लाह, और इसी तरह से अपनी यूथ का टैलेंट कैसे उभारते हैं। फिर जो आपके नसीब में होगा मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ज़िंदगी में याद रखिएगा कि अगर आपकी पर्सनैलिटी फोकस्ड नहीं है, आपका गोल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी वाले नहीं है, आपको खुश और मुतमईन रहना नहीं आता, आप मेहनत और लगन से काम नहीं करते, आप में जोश ही कोई नहीं, पहले ही सोए में ड्राइवर ही सोया बैठा है तो पीछे वाले क्या करेंगे, और आपको अपने फ़राइज़ और मकसद हयात का फ़र्क ही नहीं पता ना, तो माजरत के साथ अभी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जिनमें जज्बात होते हैं, इसको ज़हानत की एक किस्म कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने भी सुना होगा कि एक शख्स था गोल्डन मैन उसको कहते हैं, मिटेलियन कुछ उसका नाम है, उसने 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजडम्स डिस्कवर की थी, जिसको आप IQ भी कह सकते हैं, और वो कहते हैं 9 नहीं है, एक और भी है और वो 10वीं है, और उसको वो नाम देता है इमोशनल इंटेलिजेंस। कहते हैं दुनिया में तरक्की करने वाले लोगों में से ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट या जीनियस या बहुत अच्छे हाफिज़े वाले कामयाब नहीं होते, कामयाब होते हैं तो वो होते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। लोगों ने पूछा कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते क्या हैं, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, ये वो लोग हैं जो सोशल जीनियस होते हैं, पीपल हैंडलिंग उनको आती है। हमारे स्टडी में मोस्टली नंबर्स के लिए बंदे को कॉन्शियस कर देते हैं ना, आपके पास 10 लोग आते हैं उनके में से 9 लोगों के 100 में से 100 नंबर है और उनको पूरी डिग्री मिली भी है, लेकिन एक बंदा ऐसा भी हो सकता है कि नंबर तो उसके बस पूरे पूरे ही थे लेकिन उसको लोगों से बात करना आता है, उसको लोगों को काम डेलीगेट करने आते हैं, उसको सिचुएशन हैंडल करनी आती है, वो पैनिक नहीं क्रिएट कर देता, वो घबरा नहीं जाता, वो परेशान नहीं हो जाता। आप उस 10वें को ले लीजिए, पहले 9 से माजरत कीजिए।